मेरे अत्यंत प्रिय मित्रों नमस्कार। एफईआईएस के आज 19 मार्च 2020 है और इसके डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपनी बात की शुरुआत करूं, मैं इस बात के लिए आप सबसे सच में क्षमा चाहूंगा कि मैं बहुत धीमी गति से आगे बढ़ रहा हूं। हो सकता है कि होता यह है ना कि जब कोई धीमी गति से चले और आप थोड़ी सी तेज गति से चलने वाले हैं तो मन ही मन एक इरिटेशन सा होता है कि यार ये क्या हो रहा है, आगे बात बढ़ ही नहीं रही है, उसी उसी बात को कहा जा रहा है। देखिए, अगर आप गौर करेंगे तो मैं उसी उसी बात को नहीं कह रहा हूं, बात आपको उसी जैसी ही जरूर सुनाई पड़ रही होगी, दिखाई दे रही होगी, समझ में भी आ रही होगी, लेकिन बातें अलग हैं। और वो बातें अलग इसलिए हैं क्योंकि चीजें अलग हैं और जब तक आप इनकी विविधताओं को, इनके कलर्स को नहीं पकड़ पाएंगे तब तक प्रिपरेशन में आप ये मान करके चलिए कि कुछ चूक हो जाएगी। इसलिए मित्रों, मैं इस नीति को लेकर के चल रहा हूं कि मैं भले ही थोड़े से ही टॉपिक कवर कर पाऊंगा, मेरी चिंता यह नहीं है कि मैं आपको बायोडायवर्सिटी की पूरी तैयारी करा सकूं, क्योंकि वैसे भी संभव नहीं है। मेरी चिंता यह है कि हो सकता है कि बायोडायवर्सिटी पर बात करते करते मैं आपके अंदर कुछ ऐसी बात डालने में सक्षम हो जाऊं कि आपकी तैयारी करने का जो तरीका है वो सही हो जाए, और अगर वो सही तरीका पहले से ही सही है तो और वो थोड़ा सा मजबूत हो जाए। इसलिए आप थोड़ा सा मेरा साथ देने का निश्चय करें। फ्रेंड्स, अब आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं कि ये जो जैव विविधता की जो प्रवणता है इसके तथ्य क्या हैं। तथ्य कहने का मतलब है कि इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, यानी कि जैसे हमने कहा, आपने आपको ध्यान होगा कि परिभाषा के अंतर्गत हमने लोगों ने यही कहा था कि जब हम उच्च अक्षांशों से नीचे के अक्षांशों की ओर आते हैं और जब पर्वतीय क्षेत्रों में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो प्रजातियों की संख्या में अंतर होने लगता है। हमने ये बात नहीं की थी कि अंतर किस तरीके का होता है, ज्यादा हो जाता है, कम हो जाता है। आइए अब उसी को थोड़ा सा फैला करके देखने की कोशिश करते हैं, फैला कर देखते हैं, और यह बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे आप समझ लीजिए कि जैव विविधता के बारे में आगे चल करके जो आप पढ़ेंगे उसकी एक नींव है, उसकी एक कुंजी सी है, तो आपको इसे थोड़ा सा ध्यान से भी सुनना होगा। देखिए, अब मैं पहले तथ्य पर आता हूं। ध्रुवों से जब हम भूमध्य रेखा की ओर चलते हैं, देखिए ये शब्द है ध्रुवों से, अब आपको यहां उच्च अक्षांश शब्द सुनने को नहीं मिल रहा है ना, अगर आप उच्च अक्षांश कहेंगे तो वो भी सही होगा, लेकिन मैंने कहा कि ध्रुवों से, जानबूझ करके मैं ध्रुवों शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। जब हम 90 डिग्री पर पहुंच जाते हैं, चाहे वो नॉर्थ हो या साउथ हो, तो उसका नाम हो जाता है उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, और वैसे भी हम नॉर्थ ग्लोब और साउथ ग्लोब कहते ही हैं, ठीक है। तो यहां मैंने उच्चतम अक्षांश शब्द का प्रयोग नहीं करके ध्रुवों से, जब मैं ध्रुवों से शब्द का इस्तेमाल करता हूं तो उसका मतलब ही हो जाता है 90 डिग्री, और वो उसका टॉप मोस्ट डिग्री है, उसके ऊपर तो कोई दूसरा लैटिट्यूड है नहीं। तो ध्रुवों से मैं कहां चल रहा हूं, भूमध्य सागर की ओर, सॉरी भूमध्य रेखा की ओर, भूमध्य सागर नहीं, भूमध्य रेखा की ओर, इक्वेटर पर मैं आ रहा हूं, और इक्वेटर कहां है, 0 डिग्री लैटिट्यूड है। तो आप देख रहे हैं कहने का ढंग बदल गया, तो मैं 90 डिग्री से, मेरी अब जो जर्नी है वो 90 डिग्री से टुवर्ड्स 0 डिग्री है, तो वही बात होगी कि उच्च अक्षांशों से मैं नीचे के अक्षांशों की ओर जा रहा हूं। तब होता क्या है, जैसे जैसे हम ऊपर के अक्षांशों से नीचे की अक्षांशों की ओर चलते चले जाते हैं, वैसे वैसे जो जीवन की परिस्थितियां हैं वे अनुकूल होती चली जाती हैं। ये मेन रीजन है, जब मैं कह रहा हूं कि जीवन की परिस्थितियां अनुकूल होती चली जाती हैं तो ये कैसे होती चली जाती हैं, वो कौन सा फैक्टर है जो हमारे जीवन की परिस्थितियों को अनुकूल बनाता चला जाता है। फिर आपको थोड़ा सा भूगोल को यहां लाना होगा। आप जानते हैं, इतना तो आपको मालूम ही है कि जो ध्रुव हैं वो बिल्कुल बर्फ से ढके हुए हैं, 6 महीने दिन 6 महीने रात होती है, ठंड भयानक होती है। तो देखिए, जहां इतनी ज्यादा ठंड होगी तो अब इतना तो कॉमन सेंस से आप भी समझ ही सकते हैं और समझ ही रहे होंगे कि वहां जीवन की परिस्थितियां कैसे अनुकूल होंगी। जहां हमेशा माइनस डिग्री टेम्परेचर रहता हो, माइनस से भी 40 पता नहीं कितने डिग्री टेम्परेचर चला जाता है, जमीन हमेशा बर्फ से ढकी हुई है, ठंडी हवाएं चल रही हैं, तो क्या आपको लगता है कि किसी भी जीव के रहने लायक वह जगह होगी? लेकिन ऐसा आप नहीं कह सकते आउटराइट कि नहीं, वहां कोई जीव नहीं रह सकता। मनुष्य की बात हम छोड़ते हैं, चलिए मनुष्य तो कहीं भी रहने लायक अपने आप को बना लेता है, लेकिन वहां भी जीव जंतु हैं। केवल जीव जंतु ही नहीं है, वहां वनस्पतियां भी हैं, वहां के वातावरण के अनुकूल वहां वनस्पतियां भी हैं और वहां जीव जंतु भी हैं, कहीं रेंडियर मिल रहे हैं तो कहीं कोई मिल रहा है, इस तरह के हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है। प्रकृति ने किसी भी स्थान को बिल्कुल सुनसान नहीं बनाया है, वहां की परिस्थितियों के अनुकूल उस तरह की वनस्पतियों और उस तरह के जीवों को उसने जन्म दिया है। अगर हम नेचुरल तरीके से बात करें, वैसे तो अब उत्तरी अंटार्कटिका वगैरह में बकायदे हमारे साउथ पोल वगैरह नॉर्थ पोल पर आदमी भी जाने लगे हैं, वहां रिसर्च सेंटर एस्टेब्लिश कर दिए गए हैं, वो एक बात अलग है, ठीक है। तो हम नेचुरल उसकी बात कर रहे हैं, यहां आर्टिफिशियल की बात नहीं है। तो वो कौन सा फैक्टर है कि जब हम ऊपर से नीचे उतरते चले जाते हैं तो परिस्थितियों को अनुकूल बनाने लगता है? मित्रों, जो सबसे बड़ा जो फैक्टर है वह है टेम्परेचर, तापमान। ये जो हमारा पूरा का पूरा जो पूरी की पूरी हमारी जो धरती है, इसे आप पूरा का पूरा जो जीव मंडल मान लीजिए, तो इस जीव मंडल में जीवों का निर्माण करना, उनका पालन पोषण करना, उन्हें नष्ट करना, नए जीवों की उत्पत्ति होना, इन सबके केंद्र में टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर अब होता क्या है, आप देखिए कि जैसे जैसे, अब आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि जैसे जैसे हम उच्च ध्रुवों, उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर आते हैं तो टेम्परेचर धीरे 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 बढ़ने लगता है। और आपको मालूम है कि 0 डिग्री पर टेम्परेचर सबसे ज्यादा होता है, भूमध्य रेखा पर तापमान सबसे ज्यादा होता है, यह ज्योग्राफी में आपने पढ़ा है। इसके उलट कर लीजिए, निम्न अक्षांशों से जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ चलते चले जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर कम होता चला जाता है, यानी कि ठंड बढ़ती चली जाती है। इसीलिए देखिए कि जो नीचे का जो ब्लॉक होता है, जिसे आप रेंज कह लीजिए, बेल्ट कह लीजिए, जोन जिसे आप कहते हैं, 0 डिग्री से 23.5 डिग्री को आपने नाम दे दिया है, बकायदे तापमान यहां अधिक रहता है, तो उष्ण कटिबंध कह दिया है, उष्ण कटिबंध जहां गर्मी ज्यादा होती है। 23.5 डिग्री से फिर आप ऊपर की तरफ जाते हैं तो उसको आप कह दिया आपने शीतोष्ण कटिबंध, वहां शीत भी है वहां उष्ण भी है। और जब आप फिर 66.5 के ऊपर चले जाते हैं तो उसको आपने नाम ही दे दिया शीत कटिबंध, या वहां तो हमेशा ठंडा ही ठंडा रहता है। तो दोस्तों, जो उष्णता है वो हमारे जीवन का आधार होती है, और जिन क्षेत्रों में जितनी ज्यादा उष्णता होगी, जितनी ज्यादा गर्मी होगी, वहां जैव विविधता उतनी ज्यादा आपको मिलेगी, क्योंकि जीवन की परिस्थितियां उतनी ज्यादा अनुकूल होती चली जाती हैं। और देखिए, जब मैं तापमान की बात कर रहा हूं तो उसका संबंध सिर्फ तापमान से नहीं है, उसका संबंध और दूसरी चीजों से भी है। और ये जो दूसरी चीजें हैं ये तापमान से कंट्रोल्ड होती हैं, जैसे वर्षा। वर्षा बहुत बड़ी बात है सभी तरह के जीवों के लिए, चाहे वो वनस्पति हो, पेड़ पौधे हो, या मनुष्य हो, या जीव जंतु हो, पानी तो चाहिए। अब ये पानी कहां होगा? सीधी सी बात है कि जो जहां टेम्परेचर अधिक होगा वहां वर्षा ज्यादा होगी, ठीक है। उसके अपने फैक्टर्स होते हैं, अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, और इसीलिए आप देखते हैं कि चूंकि 0 डिग्री से लेकर के 5 डिग्री साउथ और नॉर्थ, जिसे हम भूमध्य रेखीय क्षेत्र कहते हैं बेसिकली, वहां सबसे ज्यादा टेम्परेचर होता है। और जो चूंकि सबसे ज्यादा टेम्परेचर होता है वहां सबसे ज्यादा वर्षा भी होती है, सबसे ज्यादा वर्षा होती है। और इस बीच के हिस्से को 5 डिग्री नॉर्थ, 5 डिग्री साउथ, तो टोटल 10 डिग्री हो गया, 5 को जोड़ दीजिए तो टोटल ये जो 10 डिग्री का जो बेल्ट है, जो पृथ्वी के बीचों बीच है, यहां जो वन पाए जाते हैं उनको हम कह देते हैं वर्षा वन। वर्षा वन कहते हैं ना, रेन फॉरेस्ट, भूमध्य रेखीय वन। वर्षा वन क्यों कहते हैं? क्योंकि इन वनों में लगातार वर्षा ही वर्षा होती रहती है, वर्षा ही वर्षा होती रहती। जब वर्षा ही वर्षा हो रही है तो सीधी सी बात है कि वहां पेड़ पौधे भी बहुत होंगे, जीव जंतु भी बहुत होंगे, उसके अनुकूल वहां बातें होंगी। तो यहां वर्षा ज्यादा क्यों हो रही है? क्योंकि यहां टेम्परेचर ज्यादा है, राइट। तो इसीलिए कहा कि जब उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर हम आते चले जाते हैं तो जीवनगत परिस्थितियां अनुकूल होती चली जाती हैं, तो जैव विविधता की संख्या बढ़ती चली जाती है। इसका मतलब है कि इसके आधार पर आप कह सकते हैं कि पूरी दुनिया में जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र हैं वहां सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है। सूत्र हो गया, खत्म हो गई बात। दूसरा देखिए कि वो क्या सूत्र है। दूसरा सूत्र है, तो इसमें आप कह सकते हैं ना कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के वन इसके सबसे अच्छे उदाहरण है। जो टेगा और टुंड्रा जलवायु वाले क्षेत्र होते हैं, ये जब आप क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट पढ़ेंगे, ये भी देखिए ज्योग्राफी का हिस्सा हो गया। अब आपको मालूम होना चाहिए कि ये टेगा और टुंड्रा जलवायु वाले क्षेत्र कौन से हैं। अगर मैं उसकी बात यहां कहने लगूंगा तो फिर आप कहेंगे कि सर आप बायोडाइवर्सिटी पढ़ाने की जगह, बताने की जगह आप ज्योग्राफी बताने लगे। तो दोस्तों, मैं ऐसा नहीं करूंगा। हाँ, ये वहां की विशेषता जरूर है कि वो क्षेत्र उन क्षेत्रों में काफी ठंड होती है, तो जो कि चूंकि जो भी क्षेत्र ठंडा होगा, देखिए वहां की एक बहुत साइंटिफिक बात है कि जो चीजों की जो वृद्धि दर होगी ना वो कम हो जाएगी, वृद्धि दर कम हो जाएगी, धीरे धीरे चीजें बढ़ेंगी। तो जब वृद्धि दर कम हो जाएगी तो वहां फिर आप मान करके चलिए कि चाहे वनस्पति हो चाहे जीव हो, उनका भी विकास कम होगा, उनकी संख्या भी कम होगी। तो ठंडा प्रदेश जो होगा वहां जैव विविधता कम मिलेगी, जो इससे पहले मैंने आपको जो पॉइंट बताया था लगभग लगभग उसी से जुड़ा हुआ ये पॉइंट है। अब हम आते हैं पर्वत पर। अब आप देखिए कि पर्वत पर क्या होता है। दोस्तों पर्वत की एक विशेषता आपको मालूम है कि जैसे जैसे हम समुद्र तल से ऊपर की ओर बढ़ते चले जाते हैं, यानी कि आसमान की ओर जाते हैं, तो वैसे वैसे टेम्परेचर कम होता चला जाता है। हिल स्टेशन कहाँ है, गर्मी के दिनों में लोग हिल स्टेशन पर जाते हैं, लोग मसूरी जाएंगे, लोग पचमढ़ी जाएंगे, है ना, लोग ऐसे ठंडे स्थानों पर जाते हैं। तो ये ठंडे स्थान है कहाँ, ये ठंडे स्थान पहाड़ों पर है, पर्वतों पर है। तो पर्वत ठंडे क्यों हैं? तो चलिए हम इसी एक सूत्र को लेकर के चलते हैं कि जैसे जैसे हम समुद्र तल से ऊपर चलते चले जाते हैं तो ठंड बढ़ती चली जाती है। बस जो मैंने पहला सूत्र बताया है वो आप उसको यहां लागू कर दीजिए, बस बात खत्म हो गई। तो जो पर्वत होंगे, अब ये प्रश्न, इस प्रश्न के उत्तर को मैं आप पर छोड़ता हूं कि अब हम पर्वत के मान लीजिए 10,000 फीट पर ऊंचाई पर हैं और हम 10,000 फीट से अब नीचे की ओर आते चले जा रहे हैं, है ना, समुद्र तल से मान लीजिए इसकी जो शुरुआत हुई है, इसका जो बिल्कुल जहां से पहाड़ की शुरुआत हुई है वो 700 फीट पर है। तो हम 10,000 से उतर करके 700 फीट पर आ गए, तो मैदान में पहुंच गए, 500 फीट पर मैदान में आ गए मान लीजिए। तो अब आप जो मैंने अभी उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांशों के बारे में बात की है, अब आप उसको इस पर अप्लाई करके अब फाइनल स्टेटमेंट निकालिए, अपनी तरफ से निष्कर्ष निकालिए कि वहां जैव विविधता के मामले में क्या होता होगा, कहां जैव विविधता ज्यादा होगी, कहां जैव विविधता कम होगी, अगर ज्यादा होगी तो क्यों होगी, कम होगी तो क्यों होगी। बेहतर होगा कि आप इसके बारे में थोड़ा सा अनुमान लगाइए, आप लगा लेंगे, निराश मत होइए, परेशान मत होइए कि ये सर ने क्या बवाल हमारे सिर पर थोप दिया। थोड़ी मेहनत कीजिए, आपको मजा आएगा जब हम कोई चीज पा लेते हैं ना, अपनी तरफ से निकाल लेते हैं तो उससे एक अलग किस्म का ही सुख मिलता है। तो दोस्तों जो ग्रेडियंट ऑफ बायोडायवर्सिटी थे उसके ये तीन ही इंपॉर्टेंट तथ्य थे जिन्हें मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, और मेरा विश्वास है कि आपके समझ में आ भी गया होगा। तो अब आज के लिए बस इतना ही, आप सब मेरा अभिवादन स्वीकार करें, नमस्कार।